किंच लोभी खलु लोभ्यम वस्तु प्राप्नोतु न प्राप्नोतु वा किंतु तत्र औत्सुक्यम त्यक्तम नोत्साहते इत्याह। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी लिखते हैं इस श्लोक के उपक्रम में, कौ उत्साहित संत्यक्तुं, कौन ऐसा है जो श्री कृष्ण के संविद को त्याग सकता है। संविद मतलब बात कथा या वो जो एकांत में बोले थे, वो जो कुछ बोले थे उसको कौन त्याग सकता है। वो नहीं चाहते हैं लक्ष्मी को अपने साथ रखना, लेकिन लक्ष्मी उनमें इतना आसक्त है कि वो कभी छोड़ती नहीं है। वो अनिच्छता है, उनकी इच्छा नहीं है किसी स्त्री की, लेकिन श्री पड़ी हुई है, वो उनके साथ ही रहती है। जब श्री जैसी विदुषी गुणवती प्रेमवती महिमावती नारी इतना आसक्त है कृष्ण में, नहीं चाहते हैं फिर भी वो उनको नहीं छोड़ पाती हैं, तो कौन है ऐसा जो उत्तम श्लोक के बात को छोड़ दे। संविदम, संविद का अर्थ है कृष्ण के विषय में कहे गए वाक्य या कृष्ण के द्वारा कहे गए वाक्य। दो प्रकार के कृष्ण कथा है, एक कृष्ण की बोली हुई बातें जैसे भगवद गीता है, कृष्ण ने उसका उपदेश किया है, और कृष्ण का मुरली गीत, कृष्ण का मनुहार मनाना जो भी है, तो एक वो है। और कृष्ण के विषय में सुखदेव गोस्वामी आदि ने जो कहा है या गोपियों ने कहा है, अनादिकाल से भक्त बोल रहे हैं, इसको कृष्ण संविदम कहते हैं। वित्त का अर्थ होता है जानना, सम का अर्थ है सम्यक। जब हम किसी वस्तु का विज्ञापन करते हैं, जनाते हैं, तो उसको संविदम संबित कहते हैं। संबित शक्ति है ना भगवान की, ज्ञान शक्ति, चित्त शक्ति, संबित संधनी हिलादनी, तो इसी संबित शक्ति के द्वारा भगवान श्री कृष्ण सब कुछ जानते हैं, क्योंकि वो ज्ञान गण है। तो संविदम का अर्थ है कवियों के द्वारा या स्वयं श्री कृष्ण द्वारा कुछ बातें बोली गई कृष्ण के विषय में ही, इसलिए उत्तम श्लोक संविद कहा गया। जिनका यश उत्तम है उनका संविद, तो ये यश से इसका संबंध है संविद का, नहीं तो श्री कृष्ण का कोई दूसरा नाम दिया जाता है। उत्तम श्लोक उनकी दिव्य अलौकिक परम मधु लीलाओं का वाचक। तो श्री कृष्ण एक तो ऐसे ही उत्तम श्लोक हैं, और उत्तम श्लोक के जो संविद हैं, जिनके विषय में सब लोग बोले हैं, भगवान शेषनाग बोले हैं, शिव जी नारद जी सब बोलते हैं, और वो बोले हैं फिर कुछ, तो उत्तम श्लोक के विषय में बड़े बड़े विद्वानों ने जो कुछ कहा है कृष्ण कथा, और कृष्ण ने जो हम लोगों से कहा है मनुहार करते समय, हमारे चरण पर गिर कर हमें मनाते समय, या एकांत कुंज में और जगह पर, कौन ऐसा है जो छोड़ सकता है उसको। कौ संत्यक्तुम उत्साह, तो कौन त्यागने का उत्साह भी करेगा, सोचेगा भी, तो हम कैसे छोड़ सकती है, मिले या मत मिले। चक्रवर्ती पाजी कहते हैं लोभी खलु लोभ्यम वस्तु प्राप्नोतु न प्राप्नोतु वा किंतु तत्र औत्सुक्यम त्यक्तम नोत्साहते। लोभी व्यक्ति को लोभ्य वस्तु मिले या ना मिले, लेकिन पाने की लालसा उसकी नहीं जाती है। जब ये कह रहे हैं कि उनका दर्शन दुर्लभ है, ब्रज में नहीं आएंगे, और फिर कहते हैं कि मैं फिर भी आशा लगी हुई, तो आशा क्यों लगी हुई है। सिद्धांत यह है कि अगर वो लोभी है और वस्तु लोभ्य है, जिस वस्तु के प्रति लुभाया है, तो मिले या ना मिले उत्सुकता तो नहीं जाएगी। ये बात इसलिए कह रहे हैं कि श्री कृष्ण आवे और ना आवे, लेकिन वो इतना मधुर है, इतना प्रेमी है, इतना सुंदर गुणवान कि उनको पाने की लालसा तो नहीं जाएगी, कि बातें नहीं जाएंगी। लालसा अपनी व्यक्त होती है कैसे, मतलब लालसा क्यों बनी हुई है, किस कारण से आशा बनी हुई है, तो आशा बनी हुई है उत्तम श्लोक ने जो बोला है उस कारण से, वो छूट ही नहीं रहा। और उत्तम श्लोक के विषय में और ये सुखदेव आदि ने जो कह दिया है वो भी कारण है, नहीं छूटेगा। उत्तम श्लोक के द्वारा संविद या उत्तम श्लोक के विषय में जो भी संविद है छूट नहीं सकता है। तो जब उनकी बातें ही नहीं छूट सकती हैं तो कृष्ण कैसे छूट जाएंगे, ये कैमुत न्याय से। जिसके विषय में बोली गई बातें नहीं छूटती हैं तो कृष्ण छूट जाएंगे, कैसे आशा छूट सकती है। कह जन इति सामान्य निर्देश सर्वलोकापेक्षया, जन केवल शब्द कह शब्द है, कौन तो सामान्य निर्देश के द्वारा देश काल दैत्य दानव मनुष्य पशु पक्षी कीट पतंग कुछ भी कोई भी हो, कोई भी यदि श्री कृष्ण के संविद को एक बार प्राप्त कर ले, वो चाहे पुमान हो या स्त्री हो, नहीं कहते हैं वो पुरुष हो तो वो भी नहीं छोड़ सकता है, पुनः स्त्री कथम इत्यर्थ, फिर स्त्री कैसे छोड़ सकती है। कह पुलिंग में है, नहीं तो का शब्द रहता। उत्तम श्लोक संविदम उद्गतम तमो जस्मा तथा भूत श्लोको जस्य इति जस्य जसः श्रवणादपि तमो हानि तस्य, जिनका यश श्रवण करने से भी अज्ञान नष्ट हो जाता है उनके संविद को कोई कैसे छोड़ सकता है। उत्तम श्लोक का अर्थ उत्तम श्लोक कहा गुण रूपादि वर्णने न कबीनाम पद्यानी जस्मिन इति महात्म विशेष उक्त तस्य संविदम, उनकी बातें जिनके उत्तम श्लोक हैं, उत्तम श्लोक का उत्तम श्लोक बनाए हैं कवि लोग, गुण रूपादि वर्णने न कबीनाम पद्यानी उत्तम श्लोक का, और उत्तम उत्तम श्लोक जैसे ये सूरदास जी बनाए हैं, रत्नाकर जी भरतेंद्र जी लोग बनाए हैं कृष्ण के विषय में उत्तम उत्तम श्लोक, तो कबीनाम पद्यानी और में वर्णन क्या है गुण रूपादि वर्णने न कबीनाम पद्यानी जस्मिन, जिन कृष्ण के विषय में बड़े बड़े विद्वान कवि उनके रूप गुण आदि का वर्णन करके पद्य बनाए हैं ऐसी महिमा वाले महात्म विशेष वाले श्री कृष्ण के संविद को कोई कैसे भूल सकता है। संविद का यह मुख्य अर्थ क्या है, न पारये हम निर्वद्य संयुजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषा पिव, यह जब रास गोष्ठी में जमुना जी के पुलिन पर बैठ करके गोपियों के बीच में भगवान ने एक प्रवचन किया, गोपियों ने पूछ दिया कि प्रेम किसे कहते हैं और प्रेम करने वाले कितने प्रकार के होते हैं, उनका व्यंग था कि हम लोग तो घर द्वार छोड़ करके आपसे प्रेम करते हैं और आप हमें छोड़ करके इधर उधर हमें बहुत दुख देते हैं। तो उसमें भगवान सिद्धांत वर्णन करते करते अंत में कहते हैं कि हे प्रियाओं मैं तुम्हारे प्रेम का बदला ब्रह्मा जी की आयु प्राप्त करके भी नहीं कर सकता, बहुत काल तक यदि तुम्हारे लिए मैं वेद छोड़ू घर छोड़ू भाई छोड़ू माता पिता छोड़ू और केवल तुम्हारी सेवा करता रहूं तो देवताओं की आयु प्राप्त करके भी उतने दिन सेवा करके भी तुम्हारे प्रेम का बदला नहीं चुका सकता, मैं तुम्हारे प्रेम का ऋणी हूं, इसको संविद कहते। श्री कृष्ण की बोली इत्यादि रूपाम वाणी सं शब्द न कदाचित कथनचित त्यक्ता निरस्ता, तो सं त्यक तुम कैसे त्याग सकती है, सं शब्द से सिद्ध रहा है कदाचित कभी भी कथनचित किसी प्रकार से भी त्यज्यता निरस्ता त्याग संभव नहीं, संत्यक्तुम उत्सह तो कौन अदाढ़ ज्ञान अपि अवज्ञातुम किम पुनर्विस्मर्तुम अपि, श्री कृष्ण की कथा ऐसी है श्री कृष्ण की बोली ऐसी है कि उसकी अदाढ़ ज्ञान अपि, यह ज्ञान है हम लोगों को कि श्री कृष्ण जो कहे हैं वो ठोस नहीं है स्थिर नहीं है, मतलब सच नहीं बोले हैं फिर भी उनकी बातों में हमारा विश्वास नहीं हो रहा है, यह भी जानती हैं कि वो नहीं आएंगे, नहीं वो झूठ बोले हैं परंतु उनकी झूठी बातों को भी हम नहीं छोड़ सकते, हमारी आशा बनी हुई है। पता नहीं क्या हो गया है हम लोगों को, उत्सहेत उत्साहम अध्यवसायम अपि कुर्यात् किं पुनः त्यजेत् इत्यर्थ। छोड़ने का उत्साह भी कौन कर सकता है, छोड़ने की बात तो दूर है, उत्साह तक नहीं कर सकते, इच्छा तक नहीं कर सकते। श्री कृष्ण जब बोलते हैं किसी भक्त के पास, और कभी भविष्य में यह अवसर आवे कि कृष्ण ने कहा है कि मैं तुमको पर कृपा करूंगा या तुमको मिलूंगा, तो कैसे विश्वास छोड़ देगा, सामने बैठ करके कहें। और वो भी ऐसा नहीं है कि चलो एक बार कृष्ण से भेंट हुई तो कह दिए कि हाँ मैं ये करूंगा वो करूंगा, प्रतिदिन तो रास बिहार जो भी वचन देते थे तो पूरा करते थे। रात में इस कुंज में आना है तो आ गए, यहाँ घूमना है, ये करना है, वो करना है, ऐसे जीवन भी बचाते थे गिरिराज धारण करके और सब करके। और वही व्यक्ति यदि एक बार कह करके चला गया कि मैं आऊंगा मथुरा से, तो क्या उसको झूठा मान लिया जाए। प्रियतम किसी कार्य विशेष में व्यस्त हो गए हैं, लेकिन आने के लिए तो तत्पर होंगे। यहाँ झूठा का मतलब है कि ये हम जान गए कि जब वो आने के लिए कहे हैं तब नहीं आ पाएंगे, लेकिन विशेष परिस्थिति बस नहीं आए तो वो पहली बात झूठी थोड़े मानी जाएगी, तो आएंगे ये आशा लगी हुई है। तो उनकी कथा को भी उनकी बोली को भी छोड़ना कठिन है, तो फिर उनकी आशा कैसे छूटेगी। अनिच्छत अनपेक्ष माणस्य अपि जस्य। दूसरे बात है कि कैसे आप लोग कृष्ण में इतना विश्वास करती हैं, कैसे आशा करती हैं। तो गोपी जन कहते हैं कि इस विषय में श्री प्रमाण है। बेचारी श्री उनके हृदय में बसती है, लेकिन वे पूछते नहीं हैं कभी भी कैसी हो क्या हो, लेकिन क्या वो कृष्ण को छोड़ देती है, कभी नहीं छोड़ती है। तो हम कैसे छोड़ दें, इतना निकट की होकर के रात दिन सेवा में रहती है, उसको तो पूछते ही नहीं फिर भी वो नहीं छोड़ती है, तो हम क्यों छोड़ें, हम कैसे छोड़ सकती। इसका अर्थ है कृष्ण का ऐसा गुण है, ऐसा आकर्षण है कि वो तिरस्कार करें या प्यार करें फिर भी वो प्रेम करने वाला छोड़ेगा नहीं, छोड़ने का सवाल ही नहीं है कृष्ण प्रीति में। पद गाते हैं ब्रज में कि माखन की चोरी बार बार करे फिर भी तो राधा रानी प्यार करे, और अपने घर में माखन दही भरा हुआ है फिर भी जो लड़का इतना चोर है, वो इतना अवगुण है कुछ भी है, लेकिन फिर भी तो राधा रानी प्यार करे। माखन की चोरी बार बार करे फिर भी तो राधा रानी प्यार करे, और बताए कुछ भी है कृष्ण में, लेकिन राधा रानी तो उनके लिए बिल्कुल विकल रहती हैं। राधा रानी रोती रहती हैं कृष्ण के लिए। यह है प्रियतम ने वचन दिया था कि हम आ जाएंगे, नहीं आए कार्य बसात, इसका अर्थ क्या, हम अविश्वास कर जाए, कभी आशा नहीं छूटी। कौन है जो छोड़ने का साहस भी इच्छा भी कर सकता है, छोड़ने की तो बात बहुत दूर है, छोड़ने की इच्छा तक नहीं होगी। और सबसे बड़ा प्रमाण दे रही हैं लक्ष्मी जी को, प्रमाण है कि भगवान है लक्ष्मी जी से अनपेक्ष रहते हैं, ऐसा नहीं है कि उदासीन रहते हैं। उदासीन का अर्थ दूसरा हुआ कि हमें कोई इनसे मतलब नहीं है, लेकिन अनपेक्ष का अर्थ हुआ कि उनसे कोई अपेक्षा सुख की आशा नहीं रखते हैं कि हमें इनसे सुखी होना है या इनके धन से हमें आवश्यकता है या ये वो। फिर भी श्री जस अंगात जिनके वक्षस्थल से क्वचिदपि न च्यवते, कभी भी इधर उधर चुती नहीं जाती नहीं, हमेशा रहती। तो एक तरफ ऐसा व्यक्ति जो चाह नहीं रहा है, कभी प्रेम नहीं कर रहा है, तो उसके साथ क्या रहना है, लेकिन फिर भी लक्ष्मी बनी रहती है, उनके साथ रहती है। तो इसी तरह से हम लोग भी भले कृष्ण कुछ भी हो आशा नहीं जाती है, कि आशा बंध लगा रहता है। तो हे उद्धव यह हित लागे काहे, यह कैसे अच्छा लग सकता है आपकी बात, ये आपकी बात कैसे अच्छी लग सकती है, जोग किसी को यहां नहीं सुहाएगा, ये मूल वाक्य है। उद्धव यह हित लागे काहे, क्यों अच्छा लगेगा? आप जो कह रहे हैं, हम लोगों को कोई अच्छी चीज प्राप्त नहीं होती तब ये अच्छा लगता, ये आपका योग है, ये क्यों अच्छा लगेगा? इसे बहुत अधिक गुना अच्छा हम लोगों को वस्तु मिल चुकी है, अच्छी वस्तु मिल चुकी है। उधो यह हित लागे काहे, निशिदिन नयन तपत दर्शन को, निशिदिन नयन तपत दर्शन को, तुम जो कहते ही माहे कहते। अब बार बार कह रहे हो कि वो हृदय में है, हृदय में है, अनुभव करो, यही वियोग नहीं है, क्यों ऐसा कह रहे हैं? हृदय में अगर हम मान भी लें कि वो है, तो इससे नेत्र को तो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, मन तो देख लेगा हृदय में, मन संतुष्ट हो जाएगा, और उनकी बात आप सुना रहे हैं तो कान भी तृप्त हो जाएगा, लेकिन आंख को हम क्या कहें? आंख से तो दिखाई नहीं दे रहा है कि छाती के भीतर है और इधर है, चाहे दूसरे के हृदय में भी हमें नहीं दिखाई दे रहा है, मन देख लेता है, संतुष्ट हो जाता है, लेकिन आंख नहीं। भारतेंदु जी ने कविता में कहा है, गोपियां कहती हैं, व्यापक ब्रह्म सब थल पूरन है, हम हूं पहचानती हैं, भाई बिनानंद लाल बिहाल सदा, हरि चंदन ज्ञान ही ठानती हैं, तुम उधोई है कहिए उनसो, हम और कछु नहीं जानती हैं, पिया प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखिया दुखिया नहीं मानती हैं। और सब अंग समझ जाते हैं, मन भी कुछ रस ले लेता है, स्मरण करता है, कान भी उनकी कथा सुन लेती है, लेकिन ये आंख को हम कैसे समझाएं? पिया प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखिया दुखिया नहीं मानती है। आंखों का हित करने के लिए आ जाइए, यह हम लोगों के कल्पना से बाहर चीज है। जिन लोगों ने कृष्ण को साक्षात देखा है वही समझ सकते हैं इस वाक्य का मर्म। तो निशिदिन नयन तपत दर्शन को, निशिदिन नयन तपत दर्शन को, तुम जो कहत ही माहे, निंदन परते चहूं दिस चितवती, निंदन परते चहूं दिस चितव, बिरह अनल के दाहे। ये आंखें बिरह रूपी आग से दाही हुई आंखें हैं, दागी हुई है, ये जल रही हैं, रात में दूर रहे, कभी नींद नहीं आती है, ये केवल देखती रहती है चारों तरफ की कब सांवरी मूर्ति यहाँ आएगी, कृष्ण कब आएंगे। निंदन परते चहु दिस चितवती, निंदन परते चहु बिरह अनल के दाहे, बिरह अनल के। अगर कृष्ण हृदय में हैं तो बाहर आकर क्यों नहीं आंखों को शीतल कर रहे हैं? उरते निकसी करत क्यों न शीतल, उरते निकसी करत क्यों न शीत, जो पै कान यहाँ है, कान है। यदि कृष्ण यहाँ है, यह आपके हृदय में है, यहाँ सबके हृदय में है, तो हमारे आंखों को निकल कर शीतल क्यों नहीं कर रहा है? निंदन परति चहु दिस चेतवति, बिरह अनल के दाहे, उरते निकसि करत क्यों न शीतल, जो पै कान यहाँ है। पाला गो ऐसे ही रहन दे, पाला गो ऐसे ही रहन दे, अवधियास जल था है। आशा शब्द आया था उस पर ये पद है, हमको अवधि रूप पे आशा के थाह जल में रहने दो, अथाह समुद्र में मत डाल दो, ये जो आशा है ये थाह जल है, मतलब गाध जल है, एक अवधि है ना, एक आशा है। प्रियतम ने कहा है आने के लिए तो एक आशा है, तुम तो ऐसा कह रहे हो कि आशा ही छोड़ दो। तो जल बो रही निर्गुण समुद्र में फिर न पाई हो चाहे, हम लोगों को निर्गुण समुद्र में मत डालो, आशा के छोटे से सरोवर में रहने दो, कम से कम उसमें जी करके तो रहेंगे ना। लेकिन निर्गुण के समुद्र में बोर करके क्या करना चाहे, फिर हम उससे बच नहीं पाएंगे, उबर नहीं पाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कहाँ चलेंगे, मर जाएंगे। पालागो हम प्रणाम करते हैं, हो गया बस, हरे कृष्णा। पालागो ऐसे ही रहन दे, पैर पर हम लोग गिरते, हम जैसे हैं वैसे ही रहने दो, छोह मत करो, हमारे बहुत आए हो तुम सिखाने के लिए, रहने दो रहने दो, हमको मरने दो ऐसे ही, ठीक है। हम कम से कम आशा के जल में हम खड़ी हैं, और तुम तो था निर्गुण समुद्र में फेंकना चाहते हो, फिर कोई आशा नहीं कि आना जाना, आशा की बात ही नहीं है, हम भी ब्रह्म में खो जाएंगे, वो भी सब खत्म हो जाएगा, ऐसे भयानक समुद्र में मत फेंको। पाला गो ऐसे ही रहन दे, अवधि आस जल था है, जन बो रही निर्गुण समुद्र में फिर न पाई हो चाहे, फिर तो हम चाहने के बाद भी न उसमें से निकलेंगे न कृष्ण को पाएंगे निर्गुण समुद्र में। अरे जाको मन जाही तेरा चोता सो बने निभा है, अरे उद्धव जिसका मन जिससे लग गया है, आज नहीं तो कल भेंट होगी ही। जही कर जही पर सप्त स्नेहु सोते मिले न कछु संदेह, जाको मन जाही तेरा चोता सो बने निभाहे, सूर कहाले करे पपीहा ये ते सर सरिता है। इतनी नदियां हैं, इतने सरोवर हैं, लेकिन पपीहा इनको लेकर क्या करेगा, उसको तो घनश्याम से बादल का डायरेक्ट बिंदु चाहिए मुंह में। तुलसीदास ने लिखा है कि निधर ही सिंधु सरित सर भारी, रूप बिंदु जल हो ही सुखारी, लोचन चातक जिनकर राखे, रह ही दरस जल धर अभिलाषे, निधर ही सिंधु सरित सर भारी, रूप बिंदु जल हो ही सुखा। सूरदास जी कहते हैं, गोपियां सूरदास जी के शब्दों में कहते हैं कि पपीहा को सरोवर दिया जाए हजारों, और नदी गंगा जी ही दिया जाए तो क्या लाभ होगा। जाको मन जाही तेरा चोता सो बने निबाहे, सूर कहाले करे पपीहा ये ते सर सरिता है।
सरी छैल बनो देशा गावो वेणु रवाई में, संकर्षण सहाये न कृष्णे न चरिता प्रभो, पुनः पुनः स्मारयन्ति नंद गोप सुतं बत, श्री निकेतैः तत्पद कैर विस्मर्तुं नैव शक्नुमः।
सरी छैल बनो देशा गावो वेणु रवाई में, संकर्षण सहाये न कृष्णे न चरिता प्रभो, पुनः पुनः स्मारयन्ति नंद गोप सुतं बत, श्री निकेतैः तत्पद कैर विस्मर्तुं नैव शक्नुमः। अहो तद विस्मरणे सति आशापि हियेत तच्च नैव घटेत इत्याह। श्रीपद सनातन गोस्वामी जी कहते हैं, यदि किसी तरह कृष्ण का विस्मरण हो जाता, भूल जाते, तब उनकी आशा भी कुछ घटती तो हम लोग सुखी हो जाते, लेकिन किसी भी तरह से भूल नहीं पा रही है, विस्मरण चाहती हैं, चाहती हैं कृष्ण को भूल जाना, लेकिन भूल नहीं पाती हैं, क्योंकि ये ब्रज में स एक एक इंच जो जगह है केवल कृष्ण की याद दिलाने वाली। ये कभी कभी मन में होता है कि घर घर में वे माखन चुराने आते थे, घर में हमसे ठिठोली करते थे, परिहास करते थे या और भी हमारे श्रृंगार करते थे, श्रृंगार तो नहीं, माखन चुराना आदि करते थे घर में। तो कोई कोई गोपी उस लीला की याद कर रही है तो सोचती है कि घर में रहूंगी तो याद हमेशा आती रहेगी, स्मरण रहेगा, इसलिए चलो नदी के तट पर समय बिताएंगे। सरी जमुना या मानसी गंगा आदि नदियां हैं, उनके तट पर जाती है गोपी, तो वहां पर भी कृष्ण के चरण चिन्ह, कृष्ण की वही लीला, पनघट की लीला, नहाने की लीला, गऊ को जल पिलाने की, फिर याद आने लगती। तो वहां से भाग करके गोवर्धन में जाते, चक्रवर्ती पाद जी लिखते हैं, सरित से भाग कर सैल पर जाती है, पर्वत गिरिराज जी पर, तब तक उधर और बढ़ जाता है स्मरण कि यहाँ गुफा में वे हमारे साथ आंख मिचौनी खेले थे, यहाँ दही दान मांगे थे, यहाँ झूला झूले थे, यहाँ पहाड़ के ऊपर बैठे थे, हम लोगों के साथ ये किए थे, इसकी पूजा कराए थे, इसकी परिक्रमा कराए थे, इसी को अपने हाथ पर 7 दिन धारण किए थे। वहां से भागती, ये तो और स्मरण बढ़ता जा रहा है, ये रोज रोज की बात है, ऐसा नहीं कि एक बार गई थी, रोज छटपटाती थी कैसे कृष्ण को भूले, जहां अधिक स्मरण होता था तो उसे भागती थी दूसरे जगह। तो उद्देशा, उद्देशा का अर्थ उत्देशा, उच्च देश अथवा सुंदर देश, नहीं उसे उसके अलावा जब वन में जाती थी, गिरिराज जी से वन में भागती थी, वृंदावन में या कुमुद वन, ताल वन, जो भी है इधर उधर जाती थी, तो वहां भी वही लीलाएं याद आती थी। सब कृष्णेन आचरिता, सब गिरिराज जी से वन में जाती हैं तो वन में भी और स्मरण होने लगता है, तो उससे भाग करके उद्देशा, ऊंचे देश पर आती, ऊंचे देश वन से भाग जाती है तो वहां भी लीला है। अच्छा, उसको छोड़ करके अब सोचते हैं कि अब मनुष्य के साथ नहीं रहेंगी, गौओं के साथ चलो, उन्हीं के जैसा चारेंगी, चाहे घूमेंगी, कुछ समय बीतेगा, तो गौओं को देख करके तो और स्मरण हो रहा है। और तब तक वेणु रवाई में, और अब भूलने का प्रयास करते हैं, तब तक कोई न कोई बच्चा बांसुरी बजाता रहता है, पी पी करता रहता है, तो अब तो हम मर जाते हैं, कहीं भी विस्मरण नहीं, बस हम भूल सकते ही नहीं, और सब जगह कृष्ण का चरण चिन्ह अभी भी उगा हुआ है, ये भू देवी अपने दिव्य अपने देह पर भगवान के चरणों को संजो करके रखी है, वो मिटने नहीं देती है, भगवान के चरण पर गौए नहीं चल पाती है। ऐसा पृथ्वी अपने सौभाग्य को सुरक्षित रखी हुई है, देवी है ना तो ऐसी व्यवस्था कर सकती है कि जहाँ चरण चिन्ह है उधर कोई गाय ना जाए, कोई आदमी ना जाए, कोई जानवर ना मिटे ना, वो अपना सुरक्षित रखी है। गोपियां कहती हैं कि सब जगह अभी भी चरण चिन्ह पड़ा हुआ है। वेणु रवा इमे, इमे वेणु रवा का अर्थ है कि उस समय उद्धव जी को ये सुना रहे हैं, देखिए सुनिए क्या बांसुरी बज रही है, इमे वेणु रवा, ये वेणु के रवा हमें भूलने ही नहीं देते हैं कृष्ण को, तो अथवा सबके सब में इमे लगेगा, इमे गावा, इमे वेणु रवा, ये देश, दूर से गिरिराज को दिखाकर कहती हैं, यह सैल, ये सैल हमारे पीछे पड़ गया है, ये विस्मरण होने नहीं दे रहा है, हमेशा स्मरण करा रहा है, और ये सरिता नदियां सब, ये तीन की दशा बिगड़ गई है कृष्ण के विरह में, लेकिन फिर भी ये कृष्ण की याद दिलाते रहते हैं। शंकर सण सहाय न, अपने भाई शंकरषण से युक्त होकर कृष्ण ने इन सब का सेवन किया है। आचरिता का अर्थ है सेविता, नदी में, पर्वत में, वन में, गाय वेणु रवा सबका वे सेवन किए हैं, सबको अपनाए, अपना बनाए। संकर्षण क्यों कहा गया है इसमें बलराम जी को, संकर्षण का अर्थ है प्रलय करने के अर्थ में नहीं है। श्री कृष्ण थोड़ा भी दूर जाते थे कहीं वन में जमुना जी के तरफ, तो बलराम जी तुरंत बुला लेते थे, इधर आओ, क्यों जा रहे हो उधर। माँ यशोदा ने कहा था कि इस पर एक निगरानी रखना है, तो कृष्ण को हमेशा खींच करके अपने पास रखते थे, इसलिए इनका नाम यहाँ संकर्षण दिया गया, इधर उधर नहीं जाने देते थे, अथवा अपने प्रेम के स्नेह के गुण से जो श्री कृष्ण को हमेशा खींचे रहते थे, आकर्षित किए रहते थे। तो ऐसे परम स्नेह से भरे हुए श्री बलराम जी के साथ कृष्ण ने इन सब का सेवन किया है, बांसुरी बजाए हैं, गौओं को चराए हैं, सहलाए हैं, ऊंचे ऊंचे देश में घूमे हैं, बैठे हैं, वन में विहार किए, पर्वत गिरिराज जी का उठाए, पूजा किए, गुफा में खेले खाए, नदियों में अवगाहन किए, उनके तट पर लीला किए, तो पुनः पुनः स्मारयंती नंद गोप सुतम बत बत का अर्थ हाय रे, ये निरंतर स्मरण करा रहे हैं। अब हम कहां भाग करके जाए, वो ऐसे जगह पर चली जाए जहां कृष्ण का स्मरण कराने वाली कोई वस्तु न हो, लेकिन हम कहीं जा नहीं सकती हैं। हम तो अधीन हैं, हम गोपी हैं, और वृंदावन से बाहर जा भी नहीं सकती, ये वृंदावन भी नहीं छूट सकता है, ये सबसे भारी समस्या है। ये छूट जाता, गिरिराज जी छूट जाते, या नदी जमुना छूट जाती तो राहत मिलती हम लोगों, ये छूटेंगे नहीं। और बारंबार स्मरण करा रहे, पुनः पुनः स्मारयंती, पुनः पुनः, ये निरंतर सूचित हो रहा है, निरंतरता। संकर्षण सहाय, संकर्षण सहाय संगी जस्य तेन कृष्णेन, संकर्षण जिसके सहाय हैं, साथी हैं, मित्र हैं, उनके साथ, केवल संकर्षणस्य सहायन अथवा संकर्षण के हेल्प से, संकर्षण के सहाय से युक्त कृष्ण द्वारा, सम्यक कर्षति श्री कृष्णस्य क्रीड़ा सुखार्थम सखीन। ये कभी कभी बलराम जी बच्चों को खींचते हैं कृष्ण को सुख देने के लिए, चलो तुम कृष्ण के साथ लड़ो, दंगल करो, ये करो, वो करो, तो खींचते हैं बच्चों को, संकर्षण करते हैं कृष्ण के सुख के लिए, या स्वयं ही दंगल करने के लिए खींचते हैं, तो इसलिए उनको संकर्षण कहा गया। किंवा स्नेह भरेण तस्य चित्तम एव आकर्षति संकर्षण, अथवा अपने प्रेम के बल से श्री कृष्ण के चित्त को खींच लेते हैं, इसीलिए इनको संकर्षण कहा गया। इति मिथा स्नेह न सुख क्रीड़ा सूचिता, इस तरह कृष्ण और बलराम परस्पर स्नेह से इन सब स्थानों पर सुख की क्रीड़ा किए, नदी बन, नदी बन, पर्वत आदि सब में। कृष्णे न जगत चित्ताकर्षक क्रीड़े न तत्क्रीड़ास्पदा नाम सरितादि नाम पपी चित्ताकर्षकत्व अभिप्रेतम, जो भी मैं बोल रहा हूं सनातन गोस्वामी का अर्थ, कृष्ण कहा गया कि जगत चित्ताकर्षक है, तो उनकी क्रीड़ा भी जगत चित्ताकर्षक है, यह कहने का अभिप्राय है। आचरिता सेविता अनुशीलिता स्वक्रीड़ा साधनत्व नीता, अपने क्रीड़ा का साधन बनाए इन 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 जगहों को, और इमे वेणु रवा विशेषण तत्त स्थाने तत्त लीलावा, उन स्थानों पर वे लीलाएं हुई। इसमें इमे वेणु रवा का अर्थ है कि जमुना के किनारे गिरिराज जी पर वृंदावन में और भी काम्य वन आदि स्थानों में इमे वेणु रवा इत्यादि, ये बांसुरी वादन, नाच गान, झूला झूलना, गोचारण, ये सब पुनः पुनः स्मारयन्ति। सरितः नद्यः, नद्यः बहुवचन, शैलाः शैलाः गोवर्धनादि पर्वतः, वनोद्देशः, अच्छा वन उद्देश्य एक में रखे, वृंदावनस्य तत्त प्रदेशः, यदि जलांतिके यामः, क्या दुख है चक्रवर्ती पाजी कहते हैं, क्या कहें उद्धव, यदि जलांतिके जाम, यदि हम लोग जल के किनारे जाती हैं, तदा सरितः गृहे चेद निष्ठाम तदा शिला बद्ध भूभागे न स्मर्ज मारा, जब घर में रहती हैं तो कहीं कहीं पत्थर दिखाई पड़ता है, या पत्थर से मढ़ा हुआ घर है, तो इसके चलते गोवर्धन का स्मरण होता है, और गोवर्धन के कारण गोवर्धन धारी का, गिरधारी का स्मरण। अच्युतत्वात् वा दृश्यमान शैला यदि, ये अत्युच्चत्वात् अथवा दूर से गिरिराज को देख करके कहते हैं, यदि बनानी प्रविशाम तदपि वनस्थनानानी जलस्थल बनानी सर्वाणी एव इत्यर्थ, चाहे वन हो, चाहे स्थल हो, चाहे जल हो, कहीं जाती हैं बस कृष्ण का स्मरण होता है। गावः निमिलित नेत्रा भी अवधारित श्रवण गावः, नेत्रों में आंसू बह रहा है गौओं के, और केवल सुनती रहती थी कृष्ण की बांसुरी उस समय वेणु रवा इमे सरितादय, सबके साथ इमे लगेगा, अथवा उस समय कुछ बच्चे बांसुरी बजा रहे होंगे, उनको प्रत्यक्ष सुन करके या देख करके कि देखो ये बांसुरी बजा रहा। जब तक बांसुरी ब्रज में रहेगी तब तक कृष्ण कैसे भूलेंगे। तो नंद गोप सुतम, नंद गोप के पुत्र को पुनः पुनः स्मारयन्ति, ननु तत्र तत्र अनुसंधान मात्रम बला त्यक्त्वा तम विस्मरत। माना उद्धव जी ये कहें कि ऐसा करो, जो भी देखो वहां का अनुसंधान मत करो, भूलने का प्रयास करो उन स्थानों को। तब कहते हैं कि नहीं, कोई उपाय काम नहीं करता है। श्री निकेत तद पद कर विस्मर्तुम नैव शक्नुवन्। जहां जाती हैं वहां श्री निकेत ध्वज आदि असाधारण लक्षणों से युक्त है, उनका चरण चिन्ह है दिखाई पड़ता है। तद पद कही तस्य नंद गोप सुतस्य पद कही कोमल पद है सर्वत्रोदित कृतवा विस्मर्तुम नैव शक्नुम, हम नहीं भूल सकते। अहो कष्टम न प्राप्तुम शक्यते नापि विस्मर्तुम शक्यते, किम कुर्मा क्व गच्छामः, हम कहाँ जाएं क्या करें मर जाएं, न तो वो कृष्ण मिल रहे हैं न विस्मृत हो रहे हैं, क्या करें। और कभी कभी गिरिराज जी को गाली देने लगते हैं, तुम क्यों नहीं गल करके पानी हो जाते हो। कृष्ण एक दिन हाथ पर धारण किए थे, उस समय तुम कितना सुखी था, छोड़कर चले गए तो तुमको बिल्कुल गल जाना चाहिए, वृंदावन तुमको खड़े खड़े सूख जाना चाहिए, जल जाना चाहिए, अभी भी हरे भरे हो, ये हो वो हो ऐसे। अब क्यों आशा रखे हो, क्या तुमको आशा है। किसी किसी वृक्ष को देख करके गोपियां कहती हैं क्या तुम अभी भी विश्वास करते हो कि वो तुम्हारे में झूला झूलेंगे, बेकार हरे भरे तुम हो, अब आशा छोड़ दो। लता से कहते क्या तुम विश्वास है कि गिरधारी तुम्हारा अब फूल तोड़ेंगे, क्यों हरी भरी हो। और ऐसे सबसे कहते रहते थे पागल की तरह, और कभी कभी कहती थी सखी तुम भी मुरझा गई हो, प्रिय आएंगे चिंता मत करो, तुम फूल अपने में रखो, वो आएंगे तो अपने कर कमल से अपने नखों से तुम्हारा फूल इकट्ठा करेंगे और प्रिया जी के लिए माला बनाएंगे, ये बनाएंगे, सखी तुम चिंता मत करो मत रोवो। ऐसे लताओं को पकड़ करके घंटों आश्वासन देती, और कभी कभी कहती हैं कि अब तुमको विश्वास है क्या कि वे आएंगे, क्यों फूल धारण कर रहे, तुम्हारा सब व्यर्थ प्रयास है, अब वो राजा हो गए, ये हो गए, वो हो गए। 24 घंटे गोपियों का यही काम, सब जगह मैं देखती हूँ कृष्ण ही कृष्ण है, कहाँ भूल सकूँ उनको। बाट न में घाट न में बीथि न में बाग न में बाट न में घाट वृक्ष न में बेली न में वाटिका में बन में वृक्ष न में बेली न में वाटिका में बन में। बाटन में मतलब रास्ते में, बाट रास्ते को, बाटन में घाटन में, घाट के यहाँ दो अर्थ है, गिरिराज जी की घाटी या जमुना जी के घाट, और बीथीना में गलियों में बागन में बगीचों में वृक्षन में वृक्षों में बेलिन में लता में वाटिका में वन में, वाटिका मतलब फूलों की वाटिका, और वन में दरना दीवार न में देहरी दरीचन में दरना दीवार हीरना में हारना में भूषण में तन में हीरना में हारना में भूषण में तन में कानन में कुंजन में गोपीन में गायन में कानन में कुंजन में गोपीन में गायन गोकुल में गोधन में दामिनी में घन में गोकुल में गोधन में दामिनी में
जहाँ जहाँ देखो तहाँ श्याम ही दिखाई देत, 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 शालिग्राम छाई रहो नैनना में मन में, शालिग्राम छाई रहो नैनना में मन में,
जहाँ जहाँ देखो तहाँ श्याम ही दिखाई दे। कोई गोपी कह रहे तो शालिग्राम जी कहते हैं ऐसी बात नहीं है कि वो सब जगह है, असली बात यह है कि तुम्हारे मन और आंख में उछाए हुए हैं, इसीलिए सब जगह दिखाई दे रहे हैं।
जहाँ जहाँ देखो तहाँ श्याम ही दिखाई देत, 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 शालिग्राम छाई रहो नैनना में मन में, शालिग्राम छाई रहो नैनना में मन में, शालिग्राम छाई रहो नैनना में मन में, शालिग्राम छाई रहो
सरित छैल बनो देशक अर्थ है गोपियां बारंबार घर से निकलकर गिरिराज जी की तरफ जाती थी इस आशा से कि प्रियतम वहीं घूम रहे होंगे, गाय चरा रहे होंगे, चाहे आ जाएंगे भेंट हो जाएगी, तो वहां से भागकर जमुना जी की तरफ जाती थी। इस कुंज में दिन भर घूमती रहती थी, रात में भी, और ब्रज के लोग देखते थे पागल हो गई है क्या हो गई है, हा कृष्ण कहते हुए घूमती रहती थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र इस भाव पर एक पद लिखे,
इत उत जग में दीवानी सी फिरत रही, इत उत जग में दीवानी सी फिरत रही, कौन बदनामी जान सिर पहलाई नहीं, कौन बदनामी जान ते गुरु लोगन की आस कनेक सही, त्रास गुरु लोगन की आस कब बहु भांति न के ताप सोतई नहीं, कब बहु भांति न के ताप सोतई, हरि चंद गिरी बन कुंज जहाँ जहाँ सुन, हरि चंद गिरी बन कुंज जहाँ जहाँ सुन, तहाँ तहाँ कब उठी धाई के गई नहीं, तहाँ तहाँ कब उठी धाई के गई, होनिया न होनी किन सब तिहारे तो, होनिया न होनी किन सब तिहारे तो, ताऊ प्राण प्यारे भेंट तुम संभई नहीं, ताऊ प्राण प्यारे भेंट तुम संभई नहीं, ताऊ प्राण प्यारे भेंट तुम संभई नहीं, ताऊ प्राण प्यारे भेंट तुम संभई नहीं।
कृष्ण के विरह में ब्रज में सब कुछ विषैला दिख रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, कोई स्थान, भोजन या स्वजन, ये पशु कोई भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। गोपियां कहती हैं कि वे ही कुंज पुंज जिन तारे तन बाढ़त, जित तारे तन बाढ़त, वे ही कुंज पुंज, कुंजों का वह समुदाय जिनके भीतर जिनकी छाया में आने पर शरीर स्वस्थ हो जाता था, प्रफुल्लित हो जाता था। जब प्रियतम यहाँ थे ब्रज में तो उनके संग जब हम कुंज की छाया में आती थी तो तन बाढ़त हो, शरीर बढ़ जाता था, प्रसन्न हो जाता था, सुखी हो जाता था। तीन छह आए अब गहन जो गही गौ, लेकिन आज वही कुंज है और वही छाया है, उनके छाया में आते ही ऐसा लगता है कि ग्रहण की छाया लग गई। तीन छह आए अब गहन जो गही गौ, गहन ग्रहण, अब ग्रहण जैसा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है, जैसे ग्रहण की छाया कोई नहीं शरीर पर लेना चाहता है, उस तरह से आज लग रहा है। सुरति सुजान चैन बीची न सुसीची जिन, वही जमुना पे आली वह पानी बही गौ। एक दिन ऐसा समय था जब जमुना में हमारे प्रियतम विहार करते थे, जलकेली करते थे, हम लोग उन पर पानी उछालते थे, वे उछालते थे, जल विहार करते थे। तो श्री कृष्ण के प्रेम और आनंद से सींची हुई लहरों वाली ये जमुना, लेकिन सखी आज वही जमुना है लेकिन वह पानी बह गया, वह पानी नहीं रहा। वही जमुना पयाली वह पानी बही गौ, वह सुख श्रम स्वेद समय को सहाय पौन, ताही छिय देह दैया महादुख दही गौ। वही हवा वही पवन कितना अच्छा लगता था जब प्रियतम हमारे साथ थे, यदि हम लोग नाचती थी गाती थी बहुत परिश्रम होता था, लेकिन सुख श्रम स्वेद समय, सुख का जो परिश्रम होता था, परिश्रम के कारण जो पसीने निकलती थी शरीर से, पसीनों को सुखाता था पवन, तो कितना अच्छा लगता था जब हम कृष्ण के साथ थे। लेकिन आज वही पवन जब छूता है तो ऐसा लगता है जैसे दाग दिया, जल गया अंगार जैसा लगता है आज वह पवन। ताही छिय देह दैया महादुख दही गौ, आज जला रहा है। वही घने आनंद जो जीवन को देते, तीन ही को नाव मरनी के मारी बेको रही गौ। वही घने आनंद श्री कृष्ण जो जीवन के हेतु थे, जिला रहे थे, जीवन का अर्थ जल भी होता है, वही घने आनंद जो जल बरसाते थे, घने आनंद का अर्थ आनंद का बादल, एक दिन जीवन देते थे, तो श्री कृष्ण के अर्थ में जीवन देना, उल्लास देना, प्राण दे देना, वही घने आनंद जो जीवन को देते थे, आज उनका नाम लेना भी, कृष्ण गोविंद कहना भी मरी हुई को मारने वाला हो गया। कृष्ण का नाम लेने में पहले आनंद उत्पन्न होता था, उल्लास होता था हृदय में, लेकिन आज उनका नाम मरी हुई को मारने वाला है, नाम लेने पर और दुख हो रहा है। वे ही कुंज पुंज जीत तारे तान बाढ़त हो, वे ही कुंज पुंज जीत तारे तान बाढ़त हो, तीन छह आए अब गहन जो गई गौ, सुरती सुजन चैन बिछिना सींची जीना, वही जमुना पयाली वह पानी बही गौ, वही जमुना पयाली वह पानी बही गौ, वह सुख श्रम स्वेद समय को सहाय पौन, ताही छिये देह दैया महादुख दही गौ। वे घन आनंद जो जीवन को देते, तीन ही को नाव मरिनी के मारी बे को रही गौ। वे घन आनंद जो जीवन को देते, तीन ही को नाव मरिनी के मारी बे को रही गौ। अर्थात कृष्ण के विरह में कुंज या जमुना का जल या हवा अथवा यहाँ तक कृष्ण का नाम सब दुख देने वाला हो गया, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा उल्टे और दाह उत्पन्न कर रहा है। जब गोपियां कुंज की छाया में जाती हैं तो भगवान के साथ जो जो लीलाएं हुई हैं वही याद आने लगती है, इसीलिए कुंज की छाया काटने दौड़ती है, भयानक लग रही है। जो जो वस्तुएं कृष्ण की स्मृति को और उभारने वाली हैं वो और बुरी लग रही है। के साथ रहने पर सब कुछ सुखद था लेकिन कृष्ण से बिछोड़ करके सब कुछ दुखद हो गया।
बीनु गोपाल बैरी न भई कुंजे, बीनु गोपाल बैरी न भई कुंजे, तब ये लता लगती अति शीतल, तब ये लता लगती अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंज, अब भई विषम ज्वाल की पुंज, बिनु गोपाल भरी न भई कुंज।
गोपाल के बिना ये कुंज बैरिन हो गए, आज शत्रु का काम कर रही है, हमें केवल दुख दे रही है। तब ये लता लगती अति शीतल, उस समय ये लताएं अति शीतल लगती थी, बहुत सुखद लगती थी, लेकिन अब भय विषम ज्वाल के पुंज, अब तो ये ज्वालाओं का पुंज बन गए।
वृथा बहत जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूल अली गुंज, पवन पानी घन सार सजीवन, दधिसुत किरण भानु भई गुंज, भानु भई भुंज, बिनु गोपाल बैरिन भई कुंज।
जमुना व्यर्थ बह रही है, वृथा बहती जमुना खग बोलत। भगवान की लीलाओं में जमुना जी का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जमुना के किनारे में लीला किए, जमुना में नौका विहार या जल के लिए सब करते थे, तो अब ये करें कि यह व्यर्थ बह रही, क्यों नहीं सूख करके खत्म हो जाती है, इसका पानी नहीं रहता तो इतना दुख नहीं दे। तो वृथा बह रही है और खग पक्षी जो वृंदावन में बोलते थे कृष्ण के रहने पर, तो उनकी ध्वनि सुनकर के आनंद होता था, मयूरों की आवाज, कोयल की आवाज और भी, लेकिन आज व्यर्थ बोल रहे हैं, केवल जलाने के लिए, केवल दुख देने के लिए बोल रहे हैं। वृथा कमल फूल है अली गुंज, और कमल खिल रहा है व्यर्थ, केवल दुख देने के लिए, और भौरे गुंज रहे, गुनगुना रहे। पवन पानी घनसार संजीवन दधसत किरण भान भय गुंज, आज हवा या पानी या चंदन ये सब पहले संजीवन थे, सुख देने वाले थे, लेकिन आज दुख देने वाले हो गए। और दधसत किरण भान भय गुंज, ये सूरज की किरणें तो जलाती हैं, भुंजती नहीं है, दधिसुत किरण भानु भय भुंज, बहुत बुरा लगता है चंद्रमा का उगना विरहिणियों को। रामचरितमानस में भगवान अपने मुख से कहते हैं, विशसन जुत करनिकर पसारी जारत विरहवंत नर नारी, वही चंद्रमा जो संजोग के समय सबसे सुखद वस्तुओं में एक रहता है लेकिन विरह में जलाने लगता।
बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजे, केवु धो कहिए माधव सो, विरह कदन करी मारत लुंजे, सूरदास प्रभु को मग जोवत, सूरदास प्रभु को मग जोवत अखिया भई बरन जो गुंजे अखिया भई बरन जो गुंजे बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजे। उधो अबवे दिन नहीं आई है उधो अबवे दिन नहीं आई है जिन में श्याम संगनी शिवासर छिन सम बिलसे बिताई हैं। अब वे दिन नहीं आएंगे कि श्याम सुंदर के साथ विहार करते हुए क्षण के समान बिता दूंगी मैं, अब वो दिन नहीं आएगा। वह हसीदान मांगनो उनको वह हसीदान मांगनो उनको औचक श्री कृष्ण गोवर्धन जी की घाटी में इधर उधर या साकरी खुर में आकर के हंस करके कहते थे दे दो दान, मैं राजा हूं यहाँ का, मैं राजा हूँ। और गोपीजन कहती थी हम कंस के पास खबर दे देंगे और तुम्हारा पता चल जाएगा राजा पना। तो ये कहते थे कंस, कंस क्या तुम्हारा भतार है, कंस का नाम लेती हो, एक दिन कंस को भी मेट दूंगा नाम निशान मार कर, चलो दो। और घेर लेते थे। तो आज गोपिया मनोरथ कहती हैं कि वह हसीदान मांगनो उनको अब हम लखनन पई हैं, अब देखने को नहीं मिलेगा वो दान मांगना। जमुना नात कदम चढ़ी छिपी अब हरि नहीं चीर चुराई हैं, अब नहीं चीर चुराएंगे, अब बहुत बड़े हो गए, अब वो दिन नहीं आएगा। वह निशि शरद दिवस भर खा के फिर विधि नाही फिराई हैं। शरद की वह रात और वर्षा का वह दिन जब वर्षा में श्री कृष्ण हमारे ऊपर घोंघी ओढ़ा करके हमको बचाते थे, घोंघी रखते हैं वर्षा में कपड़े को डाल लेना है, और भगवान श्री कृष्ण स्वयं भींज करके भी प्रिया जी को बचाते थे कि ये भींजने न पाए, घोंघी ये भोजपुरी शब्द है, कपड़े को चुन करके बांध दिया जाता। तो वह निशि शरद दिवस वर्षा के फिर विधि नाही फिराई है, अब ब्रह्मा वो दिन नहीं देगा। वह रस रास हसन बोलन हित हम छिन छिन तरसई हैं, वह गलबाही दय पिया बतिया अब नहीं सरस सुनई हैं, अब हमारे गले में बांह दे करके और हमें अब वो सरस बात नहीं सुनाएंगे। हरी चंद तरसत हम मरी हैं तौ नवे सुधिलई हैं, हम ऐसे ही लगता है तलफ कर मर जाएंगे लेकिन वे सुधि नहीं लेंगे, क्यों नहीं ब्रज में आएंगे, उसका कारण बताते हुए गोपियां कहती हैं सूरदास जी के शब्दों में, यही डर बहुरी न गोकुल आए, यही डर बहुरी न गोकुल आए।
क्या डर था, हमारी करनी याद कर कर के वे मधुपुर में बस गए हैं और कान पकड़ लिए कि अब भैया ब्रज में नहीं जाएं, उन्होंने ये सोच लिया इस डर से नहीं आए। क्या डर है,
अधरातिक ते उठी बालक सब, अधरातिक ते वही जगई हैं आए, बिनु पद त्राण बहुरी पठवेंगी बन ही चरावन गाय, बिनु पद त्राण बहुरी पठवेंगी बन ही चरावन गाय। तो अर्ध रात ते उठी बालक सब मोहि जगई है आय, बिन पद त्राण बहुरी पठरेंगी बन ही चरा मन गाय।
और फिर गाय चराने के लिए भेजेंगी गोपियां, मतलब जसोदा भेजेगी फिर गाय चराने के लिए, और वो भी बिना पद त्राण के, बिना जूता के, और वो भी वन में। तो बताओ अब वो आएंगे? यही डर बहुरी ने गोकुल आए, इसी डर से वे नहीं आए। यही तो कृष्ण का सुख था वास्तव में, इसी के लिए वो आ सकते हैं। लेकिन इधर से भावना हो रही है कि नहीं नहीं वो बहुत तंग आ गए, इसी डर से नहीं आए।
सुनो भवन आनी रोकेंगी चोरत दधि नवनीत।
और वे सोचते होंगे कि सोना साना घर देख करके जब मैं चोरी करने जाऊंगा तो वे पकड़ लेंगी, मैं जब दधि नवनीत चुराने जाऊंगा तो वे लोग पकड़ करके और रोकेंगी, गाली देंगी। और
पकड़ी जसोदा पहलई जही है नाचती गावती गीत,
और पकड़ कर फिर जसोदा के पास ले जाएंगे वो लोग। और हमारी आदत सुधर नहीं रही है, उनको आदत पड़ गई चोरी की, तो फिर चोर चोर हल्ला करेंगी और हमको नचाएंगी गवाएंगी।
ग्वालिन मोही बहुरी बांधेगी,
और अब सोच रहे हैं फिर ग्वालिन बांधेगी। और बांधने में सखी हम लोगों ने जसोदा की जो मदद कर दिया ये वो नहीं भूलते होंगे, उसको तो क्षमा कर देंगे कि उनकी माँ है, लेकिन हम लोग जो रस्सी दौड़ दौड़ कर दे रही थी वो नहीं भूल पाएंगे। और सोचते हैं फिर बांधेगी और हमको चोर चोर लोग कहेंगे, सब गोपियां कहेंगी हल्ला होगा, यहाँ मथुरा का मालिक हूँ, द्वारकाधीश बना हूँ, वहां जा करके चोर कहलाऊं तो कौन जाए वहां पर।
ग्वालिन मोही बहुरी बांधेगी केते बचन लगाए,
ये नहीं कि चलो एक बार बांध दिया, कितना कितना चोरी का लांछन लगा लगा करके कितना बुरा बुरा बात कहकर हमारे विषय में और फिर बांधे, तो मैं नहीं जाऊंगा।
एते दुख न सुमिरी सूर मन बहुरी तत्सहय को जाए,
तो इतना दुख का स्मरण करके कृष्ण सोचते हैं कि अब कौन जाकर सहेगा उसको, हम अब नहीं जाएंगे, अब हमको गाय नहीं चराना है, थोड़ा सा माखन चुराने पर चोर चोर चारों तरफ हल्ला, अब हम नहीं सहेंगे, इतना दिन रह करके सहे वही काफी हुआ। शायद इसी डर से वे ब्रज में नहीं आए।
कृष्ण विरह के समय भी श्री गोपियां भगवान कृष्ण की उन लीलाओं का ही गान करती रहती थी जो ब्रज में रहते समय कृष्ण ने किया था। श्री कृष्ण जब ब्रज में थे तो गोपियां किसी न किसी बहाने से उनके पास पहुंचती थी। एक बहुत ही प्रसिद्ध लीला है भगवान श्री कृष्ण की, पनघट लीला। गोपियां जल भरने के लिए जब जमुना जी के तट पर जाती हैं, श्री कृष्ण उन्हें छेड़ते हैं, रोकते हैं, उनसे दान मांगते हैं और कभी कभी भाभी कहते हैं, गाली देते हैं। और गोपियां इसी सुख के लिए श्री कृष्ण की अमृतमयी वाणी और श्री कृष्ण का सौंदर्य देखने, अमृतमयी वाणी सुनने के लिए और श्री कृष्ण का सौंदर्य देखने के लिए ही मैं जाती थी। श्री कृष्ण से मिले बिना उन्हें रहा नहीं जाता था। सूरदास जी ने इस पनघट लीला का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। सूरदास जी कहते हैं गोपियां बाहर से तो ऐसा भाव व्यक्त करती थी कि पनघट पर नहीं जाना है, परंतु वास्तव में पनघट पर ही जाना है उनको। आपस में कहती हैं कि कोई जमुना जल भर नहीं पाती है, श्याम सुंदर पनघट के पास ही अड़े हुए हैं।
पनघट रोके रहत कन्हाई, जमुना जल को भरन न पावे, यमुना जल को भरन न पावे, देखत ही फिर जाई।
कृष्ण को देखते ही तो गोपी घर लौट जाए, गोपी घर लौट जाती। तब श्याम सुंदर ने एक उपाय किया, वे अपने को छिपा लिए कहीं और गोप सखाओं को भी घाट से बुला लिए, इधर झुरमुट में या वृक्षों के नीचे छिप जाओ।
तब ही श्याम एक बुद्धि उपाई, आपन रहे छपाई, तट ठाढ़े जे सखा संग के तिन को लियो बुलाई। बैठार्यो ग्वालन को द्रुम तरे, आपन फिरी फिरी देखत, बड़ी बार भई कौन आई, सुर श्याम मन लेखत।
गोप सखाओं को द्रुमतर वृक्ष के तले छिपाए और स्वयं बार बार बाहर होकर देखते थे, कोई गोपी आ नहीं रही है, आ नहीं रही है, बहुत देर हुई, क्यों नहीं आई, इस प्रकार अपने मन में बारंबार विचार करते रहते थे। तब तक श्री कृष्ण ने एक ज्योति को देखा।
जुवती कयावत देखी श्याम, जुवती कयावत देखी श्याम, जुवती कयावत देखी श्याम, द्रुम के ओट रहे हरियापन, जमुना तट गई बाम, जुवती कयावत देखी श्याम।
श्याम ने एक ज्योति को आते हुए देखा और वे वृक्ष के ओट में छिपे रहे।
द्रुम के ओट रहे हरियापुन, जमुना तट गई बाम,
और वह सुंदरी जमुना के तट पर गई।
जल हलोरी गागर भरी नागरी, जल हलोरी गागरी भरी नागरी, जब ही शीस उठायो घर को चली जायता, पाछे सिरते घट ढरकायो।
तो वह गोपी जल को हलोर करके गागर भरने लगी। एक बार में ही वो गागर भर गई, परंतु बार बार वो गिरा रही थी, वो खाली कर रही थी और फिर भर रही थी, और गागर में बहुत ध्वनि उत्पन्न कर रही थी, जिससे कि श्याम सुंदर उस घट की ध्वनि सुनकर उसे रोकने के लिए आ जाए। गोपी के अंतह में तो ये भावना थी, अतः सूरदास जी कहते हैं जल हलोरी गागरी धरी नागरी, जल को हलोरी, उसमें आवाज पैदा की, ये फेन हटाने के बहाने अथवा घड़े को धोने के बहाने किसी भी तरह से जल को हलोरने लगी, मतलब जल में आवाज उत्पन्न करने लगी। जब घड़ा में पानी भर करके गिरा रही है तो जल में आवाज हो रही,
तो जल हलोरी गागरी भरी नागरी, जब ही शीस उठायो।
वह नागरी, वह ब्रज गोपी चाहती थी कि श्याम सुंदर आवे और रोके, लेकिन बाहर से वो ऐसा भाव व्यक्त कर रही थी जैसे श्री कृष्ण के डर से वह जल्दी से जल्दी पानी भर करके सिर पर उठाकर चल रही। तो जब वो शीश पर घड़ा उठाकर चली,
घर को चली जायता पाछे सिरते घट ढरकायो,
वो जा रहे थे तब तक पीछे से श्री कृष्ण आ करके अपनी छड़ी से उसके घड़े को ढरकाने लगे। वो हाथ से घड़ा पकड़ी थी एक हाथ से, परंतु श्री कृष्ण उसके घड़े को टेढ़ा करके और ढरकाने लगे, पानी गिरा दी। घर को चली जायता पाछे सिरते घट ढरकायो। परंतु वह गोपी बहुत चतुर थी, उसका नाम राधा था, तो चतुर ग्वाल कर गहयो श्याम को कनकल कुटिया पाई। उस चतुर ग्वालिन ने तुरंत ही श्याम सुंदर का एक हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़कर उनके सोने की छड़ी को जिससे वे गाय चराया करते थे छीन लिया। चतुर ग्वाल कर गयो श्याम को कनकल कुटिया पाई। और निसो करी रहे अचगरी मोसो लगत कन्हाई। और कहने लगी, तुम बहुत सी गोपियों के साथ इधार कर रहे हो और तुमने ऐसा दुस्साहस किया कि तुम मुझसे भी लग गए, आज मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। और हाथ में छड़ी ले ली थी दाहिने हाथ में और बाएं हाथ से कृष्ण का कृष्ण की बाह पकड़ ली, घड़े को नीचे रख करके और कृष्ण कृष्ण के लकटी को दाहिने हाथ में ले ली और बाएं हाथ से कृष्ण के हाथ पकड़ी थी और छड़ी से धमकाने लगी कृष्ण को, कहने लगी कि तुम बहुत सी सखियों के साथ बहुत प्रकार गिरार किए हो, झगड़ा कर रहे हो, लेकिन आज मेरे हाथ लग गए, आज मैं पूरा लठमार होली बता दूंगी। गागरी ले हसी दे तो ग्वारी कर री तो घट नहीं लई हो। तो श्याम सुंदर एक हाथ से गागर को उठाकर उस ग्वालिन को देने लगे कि इस घड़े को ले लो, मुझसे बहुत गलती हो गई, मैंने पानी गिरा दिया। तो गागरी लय हसी देत ग्वारी कर, हंस करके वे गागर लिए हाथ में और हंस करके ग्वालिन के हाथ में पकड़ाने लगे कि ये गागर पकड़ो। तो वो कहती है, री तो घट नहीं लई हूं, मैं खाली घड़ा नहीं लूंगी, पानी भरो और पानी भर करके मेरे सिर पर उठाओ तब मैं घड़ा लूंगी। गागरी ले हसी देत ग्वारी कर री तो घट नहीं लई हम, सूर श्याम यहाँ जानी देहूं भरी तब ही लकुट कर दई हूं। पहले तुम घड़ा में पानी भर करके लाओ और पानी का घड़ा मेरे सिर पर उठा करके रखो और यहां से सीधे तुम दूर चले जाओ तब मैं जाऊंगी। सूर श्याम यहाँ जान देहूं भरी तब ही लकुट कर दई हम, घड़े में पानी भर करके दो तभी मैं लकुट दूंगी, नहीं तो नहीं दूंगी। और इतनी ही बात नहीं है कि लकुटी नहीं दूंगी, ऊपर से लकुटी से मैं प्रहार भी करूंगी। अब तो श्री कृष्ण हाहा खाने लगे, पैर पर गिरने लगे कि छोड़ दो छोड़ दो, परंतु वह गोपी श्री राधा निर्बंध पूर्वक कहने लगी, नहीं, पानी भर करके दो तब तो मैं तुमको छोड़ूंगी। घट भरी देहूं लकुट तब दई हो, घट भरी देहूं लकुट तब दई हो, घट भरी देहूं घट भर देहूं लकुट तब दई हो, घट भर देहूं लकुट तब दई हो, घट भर देहूं, घड़ा भर करके दो तब तुम्हारी लकुटी दूंगी, तुम्हारी छड़ी दूंगी। हूं बड़े महर की बेटी तुम सो नहीं डरई हो, घट भर देहूं लकुट तब दई हूं। मैं भी बहुत बड़े गोप की बेटी हूं, वृषभानु महाराज की बेटी हूं, तुमसे मुझको कोई भय नहीं है, तुम नंद महाराज के पुत्र हो, इतना बड़ा बनते हो, तो मैं भी वृषभानु महाराज की पुत्री हूँ, तुमसे किसी भी बात में कम नहीं हूँ। मेरी कनक लकुटिया बैरी मैं भरी दई हो नीर। तब श्री कृष्ण कहते हैं ठीक है, मेरी कनक लकुटी पहले दे दो, तब मैं घड़ा भर करके तुमको दूंगा। तो कहते नहीं, पहले घड़ा भर करके लाओ, मेरे सिर पर उठाओ, तब मैं कनक लकुटिया दूंगी। तो श्री कृष्ण कहते हैं इतना चतुर बन रही है, और उस दिन तुम्हारी चतुरता कहाँ चली गई थी, जिस दिन मैं सबका चीर चुरा करके कदम पर चढ़ गया था। बिसरी गई सुधिता दिन की तो ही हरे सबन के चीर, घट भर दे हूँ लकुटे तब दई हूँ, घट भर दे हूँ। वह बात बिसर गई जिस दिन मैं सबका चीर चुराया था, आज चतुर बन रही है। मेरी कनक लकुटिया देरी मैं भरी दई हूँ नीर, बिसरी गई सुधी ता दिन की तो ही हरे सबन के चीर। यह बानी सुनी ग्वारी विबस भई, तन की सुधी बिसराई, सूर लकुट कर गिरतन जानी श्याम ठगौरी लाई। जब श्री कृष्ण ने यह कहा कि मैं एक दिन सबका चीर चुराया था, उस दिन तुम्हारी चतुरता कहाँ चली गई थी, तो यह सुनकर वह गोपी प्रेम में बिल्कुल विह्वल हो गई और शरीर की सुधि भूल गई, तथा उसके हाथ से लकुट गिर गया, उसके हाथ से छड़ी गिर गई और वह नहीं जान पाई। श्याम सुंदर ने इस प्रकार उसे मोह लिया, और श्री कृष्ण को देखने में और उनकी वाणी सुनने में इतना अभिनिविष्ट हो गई कि उसे शरीर की सुधि नहीं रही और उसके हाथ से लकुट गिर गई। तब श्याम सुंदर ने घड़ा भरकर उस गोपी के सिर पर उचकाया, उसे दिया और उसे सचेत कराया, अब मेरी छड़ी दे दो। छड़ी तो ले ही लिए थे, उसे जाने के लिए कहे। घट भरी दियो श्याम उठाई, घट भरी दियो श्याम उठाई, नेक तन की सुधीनता को चली ब्रज समुहाई, घट भरी दियो श्याम उठाई। श्याम सुंदर ने घड़ा भरकर उस घड़े को उठा दिया उसके सिर पर, परंतु उस गोपी को शरीर की थोड़ी भी सुधि नहीं रही। फिर भी वह ब्रज को चली, उसके पैर ब्रज की ओर जा नहीं रहे थे, मन तो श्याम सुंदर के पास ही रह गया, जा रही थी। श्याम सुंदर नैन भीतर रहे यानी समाई, जहाँ जहाँ भरी दृष्टि देखे तहाँ तहाँ कन्हाई। उसके नेत्रों में श्याम सुंदर इस तरह धस गए थे कि जहां जहां उस गोपी की दृष्टि पड़ती थी केवल वही दिखाई देते थे। श्याम सुंदर नैन भीतर रहे यानी समाई, जहां जहां भरी दृष्टि देखे तहां तहां कन्हाई। उतही ते एक सखी आई, कहती कहा भुलाई,
सूरय बही हसत आई चली कहा गमाई।
पथ में उसकी एक सखी मिली, उसने उस गोपी से पूछा क्या भूल गई है, तुम्हारा मन बिल्कुल अन्य मनस्क है, तुम्हारे पैर जा रहे हैं कहीं लेकिन तुम्हें ध्यान नहीं है कि तुम्हारे पैर कहाँ जा रहे हैं, तुम्हारा मन कहाँ है, क्या भूल गई हो, अभी तो घर से हंसते हुए आई थी, खुशी से आई थी पानी भरने के लिए, यहाँ से क्या गंवा कर जा रही है। तब वह गोपी कहती है
निरीह श्याम मोहिनी घाली, निरीह श्याम मोहिनी घाली।
अरे सखी, मैं श्याम की मोहिनी शक्ति द्वारा मारी गई हूँ। श्याम सुंदर में इतनी मोहिनी शक्ति है, इतनी सुंदरता है, उस सुंदरता से मैं मारी गई हूँ।
अब ही गई जल भरन अकेली, अब ही गई जल भरन अकेली, हरि चितवन उर साली, रिहो श्याम मोहिनी घाली।
अरे सखी, अभी मैं जल भरने अकेले गई थी, परंतु श्याम सुंदर की चितवन ने मुझे घायल कर दिया। हरि चितवनी उर्साली, उनकी चितवनी मेरे हृदय में धस गई, मेरे हृदय को दर्द दिया।
कहा कहूं कछु कहत न आवे, लगी मरम की भा, कहा कहूं कछु कहत न आवे, लगी भरम की भाली, सूरदास प्रभु मन हरि लीनो, बिबस भई हो यानी।
अरे सखी, क्या कहूँ, कुछ कहते नहीं बनता है, मुझे बिल्कुल भ्रम हो गया है। सूरदास के प्रभु ने, श्याम सुंदर ने मेरे मन को हर लिया और मैं विवश हो गई हूँ हे सखी। तब उस सखी की क्या दशा हुई उसका वर्णन सूरदास जी करते हैं।
सुनत बात यह सखिया तुरानी,
उस सखी की यह बात सुनकर के जो सखी प्रश्न की थी वो आतुर हो गई, वह भी कृष्ण से मिलने के लिए जल्दी जल्दी करने लगे। उसने पूछा कि श्याम सुंदर कहाँ मिले, किस घाट पर मिले, तो उसने बताया कि यहाँ पर इतनी दूर हैं, तो अभी वही हैं। गोपी ने कहा हाँ हाँ अभी वही हैं। तो यह सुन करके वह आतुर हो गई कृष्ण से भेंट करने के लिए।
सुनत बात यह सखिया तुरानी, ताहि बाह गही घर पहुँचाई, आप चली जमुना के पानी।
अपने सखी की उस विवस्था को सुनकर वह उसको घर पहुँचाई, हाथ पकड़कर ताहि बाह गही घर पहुँचाई, और घर पहुंचा करके तुरंत ही घड़ा उठाकर जमुना की तरफ चली पानी भरने के लिए।
ताहि बाह गही घर पहुंचाई, आप चली जमुना के पानी, सुनत बात यह सखी अतुरान, देखे आई वहां हरि नाही, चितवती जहाँ तहाँ बितनानी, चितवती जहाँ तहाँ बिललानी।
तो वहाँ गई, देखने लगी इधर उधर जमुना जी के तट पर, कुंजों में, वृक्षों के नीचे, कहीं भी श्री कृष्ण दिखाई नहीं दिए, तो वह तो बिलखने लगी।
जल भरी ठिठुकती चली घर ही तन बार बार हरि को पछतान।
जल भर रही थी, फिर तट पर आकर इधर उधर देखती थी, श्याम सुंदर नहीं दिखाई पड़ते थे तो जल का घड़े का जल गिरा देती थी और फिर भरती थी, फिर उठाकर चलती थी, पुनः कहीं गिरा देती थी पानी, कभी ठोकर लगने का बहाना करती थी और पुनः पानी भरने के लिए चलती थी। बार बार वह यह चेष्टा कर रही थी लेकिन कृष्ण को नहीं देख पाई, इसलिए वह बहुत दुख में पड़ गई।
ग्वालिन विकल देखी हरि प्रगटे हरस भयो तन तपन बुझानी सूर श्याम अंकन भरिलीनी गोपी अंतर्गत की जानी।
श्याम सुंदर तो वहीं कहीं छिपे हुए थे, गोपी की इस विकल दशा को देख रहे थे, अतः ग्वालिन विकल देख हरि प्रगटे, ग्वालिन की विकलता देखकर श्याम सुंदर वहाँ प्रकट हो गए और उनको देखते ही गोपी के तन का तपन बुझ गया, वो परम सुखी हो गई और श्याम सुंदर जाकर उसे आलिंगन में भर लिए।
सूर श्याम अंकम भर लीनी गोपी अंतर्गत की जानी।
श्याम सुंदर तो गोपी के अंतरात्मा की बात जानते हैं, अतः उसे जा करके अपने भुजाओं में भर लिए और उसे परम सुख दिए।
कोई गोपी उद्धव जी से कहती है, उद्धव तुम लोग सब काले हो और काले हृदय के हो। उद्धव जी अब दुख मत मानी, हम बिल्कुल सत्य बात कह रही हैं।
बिलग जनी मानो उधो कारे बिलग जनी मानो उधो कारे बिलग जनी मानो वह मथुरा काजर की कोठरी वह मथुरा काजर की कोठरी जे आवे ते कारे बिलग जनी मानो उधो कारे बिलग जनी मानो।
हे उद्धव जी एक बात हम कहती हैं, आप दुख मत मानिए, वास्तव में वह मथुरा ऐसा लगता है कि काजल की कोठरी है और जो वहां से आता है वो काला ही आता है, अर्थात वहां से जो आता है कपटी हो जाता है।
बिलग जनी मानो उधो कारे बिलग जनी मानो उधो कारे बिलग जनी मानो वह मथुरा काजर की कोठरी वह मथुरा काजर की कोठरी जे आवे ते कारे बिलग जनी मानो उधो कारे बिलग जनी मानो तुम कारे सुफलक सुत कारे तुम कारे सुफलक सुत कारे कारे कुटिल भवारे।
आप काले हैं, अक्रूर काला है और यह भंवरा भी काला है।
तुम कारे सुफलक सुत कारे कारे कुटिल भवारे कमल नयन की कौन चलावे सब हिन में मनियारे बिलग जनी मानो उधो कारे बिलग जनी मानो।
आप कारे हैं, अक्रूर काला है, भावरा काला है और आप सब में कमल नयन श्री कृष्ण तो नीलमणि ही है, सब में श्रेष्ठ, नील श्रेष्ठ, कृष्ण श्रेष्ठ।
मानो नील माट ते काढ़े मानो नील, माट ते काढ़े जमुना जाई पखारे। श्री कृष्ण ऐसे नीलमणि है, काला मणि है कि लगता है कि काली मिट्टी से उनका जन्म हुआ है, वहाँ से निकले हैं और जमुना में उनको धोया गया है, इसीलिए जमुना का पानी काला हो गया है। मानो नील माट ते काढ़े जमुना जाई पखारे, ताते श्याम भई कालिंदी सुर श्याम गुण न्यारे, बिलग जनि मानो ओधो कारे, बिलग जनि मानो।